गिरिराज जी के निकट में आकर के सबको पड़ाव डालवा दी। पहले ही उन्होंने सबसे निवेदन किया था ब्रज में ये जो गोवर्धन है, गिरिराज है, इनके पूजा हमारे लिए उचित है, क्योंकि ये हमारे लिए सब प्रकार हितकारी उपकारी हमारा परम बांधव है। कभी ब्रज को छोड़कर के अन्यत्र गमनागमन नहीं करते हैं और वही ब्रज के राजा है। जो लोग अपने आश्रित जनों को रक्षा नहीं करते, पालन नहीं करते, अपने मनमानी जहाँ इच्छा है वहीं भाग जाते हैं, चल जाते हैं छोड़ छाड़ करके, तो उनके तो मुझसे हमारा क्या मतलब है। जो सदा सर्वदा हमारा रक्षा करते हैं, हमारे पास रहते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, घर के जो कि जोगड़ा अनगाँव के सिद्ध, दूर के ढोल सुहावना, हम दुनिया दुनिया ढोलते हैं, कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विशेष करके इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कितने कितने देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो हमारे पास कभी होते नहीं, दुख के साथी होते नहीं, सुख के समय आकर के अपना पूजा लेके भाग जाते हैं, हमारा देखभाल भी नहीं करते, खबर भी नहीं लेते, ऐसे देवता से क्या मतलब है हमारा। आज यदि कहो ये देवताओं की पूजा करने से हमारा भला होगा, उपकार होगा, वर्षा देंगे, घास होगा, फसल होगा, तो जिस देश में देवताओं की पूजा नहीं होती है उनको क्या देते नहीं हो, तो नौकर है, कर्मचारी है, उनको तो काम करने ही करनी है, तो मालिक कौन है जो सदा हमारे साथ वर्तमान है, जो हमें छोड़कर अन्यत्र गमनागमन करते हैं, वो कभी किसी के रक्षक और नहीं, वो भक्षक है, वो अपने स्वार्थों से सारा दुनिया में विचरते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से क्या काम, जो जैसे माता अपने बालक को पालन करते हैं, सदा सर्वदा गोदी में रखते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे यदि कोई हितकारी होए तो हम उनकी बात सोचे भी, उनके उनके लिए पूजा करें भी, इसलिए कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से बढ़कर के श्रेष्ठ हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवता लोग हमारा पालन करें नहीं, कभी देखभाल करें नहीं, किंतु हम माँ के गोदी में है तो माँ ही हमारा पालन पोषण करती है, देखभाल करती है। तो ये कृष्ण बड़े सरल रूप में ब्रजवासियों को सबको समझाया। नंदबाबा बोलते हैं हमारे पुरखों से ये पूजा करके आ रहे हैं, तुम जो ये यज्ञ को करने नहीं दोगे इंद्र बिगड़ जाएगा, हमारे ऊपर उत्पात करेगा। वो लोगों को क्या करने वाला है, उसके पास सामर्थ्य क्या है, भगवान सर सबके पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, सृष्टि करने वाला, ये पालनहार तारनहार, वो क्या करेगा। भगवान ने बहुत समझाया, फिर कृष्ण ने बाबा को और सब स्वभाव को समझाने लगे, क्या बोलने लगे, देखो गिरिराज जी के पास हम जाते हैं, वहाँ पर जितने कंदमूल, फल फूल और जल, झरना, सरोवर, सुंदर सुंदर सब वस्तु विराजमान है, सब औषधि है, और यदि अन्यत्र कहीं जाए सब कुछ नहीं मिल सकता है, किंतु गिरिराज जी के पास सब कुछ उपलब्ध है। और गिरिराज कैसे दयालु हैं, गिरिराज खुद प्रसन्न हैं और सबको प्रसन्न करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, जब बचपन में मैंने कहाँ पहुँचा, सखाओं के साथ, मित्रों के साथ गिरिराज गोवर्धन में, तो क्या देखा, इतने फूलों के बगीचे, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, कुंद, मालती, बेली, चमेली, गंधराज और चंपा, इतने सुंदर सुंदर फूलों के बागान, हम देख करके मन प्रसन्न हो गया। क्यों, अन्यत्र किसी बाग बगीचे में जाने से उनके पास सामर्थ्य नहीं है मन की मलिनता को दूर करके और हृदय को सुंदर और स्वस्थ और सुगंधिमय कर दे और समस्त दुखों से मुक्त कर दे। एक फूल के अंदर इतना सामर्थ्य है जो जिसके अंदर सौंदर्य है, सुगंध है, नम्रता है, विनय है, सब सद्गुण से संपूर्ण है। तब मैं जब गोवर्धन जाता, मेरा थकान और मेरा कोई कष्ट या कोई चीज़ मेरे को व्यापता नहीं। जहाँ मैं वहाँ बैठ गया या खेलने लग गया तो देखा इतने सुंदर सुंदर फल गिरिराज जी उपहार देते और इतने सुंदर झरना के जल जल पान करके स्नान करके अमृत को अमृत निंदी अमृत को भी तिरस्कार करने वाला। हमारा गाई गौ माता है इतना स्वस्थ क्यों? इतना सुंदर सुंदर घास है, जिस घास को गाय थोड़ा सा चबा लिया, खा लिया और जल पान कर लिया और वो विश्राम करते हैं, कहीं नहीं जाते, आनंद से विभोर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं उनका नाम गोवर्धन है, गिरिराज है, गोवर्धयति गोवर्धन। कृष्ण स्वयं कहते हैं गोवर्धन धर्म बंदी गोपाल गोपरूपिणम गोकुल उत्सव मिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। केवल गोवर्धन हमारा तुम्हारा नहीं, सब गोप गोपियों के प्रिय है और कैसे गोविंदम गोविंद के भी प्रिय है, गोप गोपियों के भी प्रिय है। कैसे? कहते गोवर्धन जयति शैल कुलाधिराजो, ये गोवर्धन शैल ये पर्वत पहाड़ देख रहे हो तुम लोग? नहीं, ये कुलाधिराज समस्त पर्वत कुलों के राजा है। वो बचपन से द्रोणाचल के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण की, जब द्रोणाचल के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण की बचपन से बड़ा वैराग्यवान, अवगत नहीं, किससे लेना देना नहीं, कोई निमंत्रण में जाना नहीं, हवन यज्ञ में अधिष्ठान में अनुष्ठान में कहीं नहीं जाना और न किसी की बात सुनना, न किसी से बोलना, सब समय ध्यानस्थ, सब समय हरे भरे और सुंदर, उसे सौंदर्य से आकर्षित होकर के सारा विश्व उनके पास आ जाता था। समस्त पर्वतराज और समस्त शैला छोटे छोटे पहाड़ियाँ सबको सब उनको सम्मान प्रणाम करते और उनको नौछावर देते और उनके निकट कुछ मांगने आते। जो कोई उनके निकट शरणागत हुए उनको सब कुछ से, फले फूले नहीं, धन धान्य नहीं, दौलतों से नहीं, सब तरह से उनका जिम्मेदारी ले लेते, पालन पोषण करने का समस्त भार ले लेते हैं। वो जो उसके लिए क्या कहते हैं, हंताय मद्रिय वला हरिदास वर्ज जद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गौ गनय स्तनय जत पानी सूज बस कंदर कंदमुलई। कहते हैं ये वो केवल एक ही चीज चाहते थे, रामकृष्ण के चरण स्पर्श कैसे करूँ मैं जन्म तो लिया माँ बाप के पास, अब जन्म दे सकता है माँ बाप, कर्म नहीं दे सकता। हमें अच्छा करनी करना है, अपना करनी तो अपने भरनी, अपना कर्म अपने साथ जाएगा। तो वो सब समय प्रभु का अध्ययन करते थे। इतने में कुछ समय के बाद त्रेता युग में हनुमान जी आए। हनुमान जी को देखकर बड़ा खुश हो गया, वाह धन्य है भगवान के प्रिय सेवक आए, क्यों सभी आते थे उनके पास, अब जब हनुमान जी आए इतना खुश हो गया। हनुमान बोले चलो तेरे को मैं ले चलता हूँ। तो कहाँ? बोले मैं सेतुबंध में राम जी के लिए पुलिया बांध रहा हूँ, तेरे को ले जाऊँगा। तू जो मांग रहा है रोज दिन रामकृष्ण के चरण स्पर्श, वहाँ राम भी है कृष्ण भी है, अर्थात राम लक्ष्मण दोनों ही हैं। तो चिंता में पड़ गए, हाय हाय मैं तो बलराम के लिए सोचता था और कृष्ण के लिए सोचता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, अब यदि हनुमान जी मुझे लेके चले जाए तो रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण के पास भेज दे, छोड़ तो वहीं देंगे, पुलिया बांध के वहीं छोड़ देंगे, भले ही चरण रज मिल जाए, भक्तों के सब कुछ चरण रज मिले, किंतु मुझे तो अपने पास नहीं रखेंगे, अपनाएंगे तो है नहीं। तब हनुमान जी से कहने लगे, एक शर्त है, हमें बतलाओ यदि ले जाओगे तो जैसे आप उनकी सेवा करते हो मेरे को भी सदा अपने पास रखोगे, यदि मुझे भी अयोध्या में अवधपुरी में और उनके आसपास में कहीं रखो तो मैं जरूर चलूँगा और उनकी चरण धूलि मुझे रोज़ मिलना चाहिए और उनके सेवकों की मैं सेवा करने की अभिलाषा मुझे मिल है, मेरे को मिलना चाहिए। तब क्या किया हनुमान जी कहते हैं, क्यों ऐसे क्या बात है, प्रभु सबकी मनोरथ पूरा करते हैं, हैं तुम्हारा कामना पूरा करेंगे। इसलिए हनुमान जी उनको खुश करा, तो बोले क्या कहाँ रखोगे, बोले पास में कामोदगिरी पर्वत है, कामोदगिरी आज भी जाएंगे तो सब लोग रोज दिन परिक्रमा करते हैं, रोज पूजा करते हैं, उनका नाम है कामोदगिरी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा होती है ऐसे उनकी भी परिक्रमा होती है। अब बोले अच्छा, मन में कुछ कसोट कस रहे हैं, कष्ट है, किंतु फिर भी हनुमान जी जैसे प्रिय भक्त राम सेवक मिल जाए तो उनके साथ कौन नहीं दोस्ती करे और उनकी बात कौन नहीं कौन टाल सकता है, कि हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ियों को उठा उठा करके लेकर चट्टानों को बिछा करके और राम जी के लिए पुलिया बांध रहे हैं, भक्त लोग पार करेंगे, सेवा में लगेंगे, बहुत अच्छी बात है। सब लोग समझने लग जा, तेरा भाग्य खुल गया, हनुमान जी तेरे को उठा कर हथेली में ले जाएंगे, कितना भाग्य की बात है। कहते ठीक बात है, किंतु हाँ मैं चाहता था, मैं थोड़ा और अपेक्षा करता, यदि रामकृष्ण के चरण धूलि मुझे मिलता, वो ब्रजवासियों के चरण रज मिलता, मेरा वो भाग्य होता। तो ठीक है अब तो जा, फिर कभी देखा जाएगा। तो हनुमान जी ने उनको उठा लिया हैं और हथेली में उठा लिया हैं, उठा करके लेके चल दिए। इतने में जब तक ब्रज में आए नहीं पार करने के लिए, इतने में खबर आ गया, पुलिया समाप्त हो गया, अब जो जहाँ है अपने पत्थरों को पहाड़ों को जो कुछ पेड़ पौधे ला रहे हो वहाँ ही छोड़ दो, चुपचाप आ जाओ, पुलिया समस्त सेतु बंद गया है। और केवल ब्रज ब्रज में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही हनुमान जी ने बोला ठीक है भाई, अब तो तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं छोड़ता हूँ, तुम यहीं रहो, कभी जरूरत पड़ा तो मुझे याद करना, मैं तुमको अयोध्या भी ले जाऊँगा और जहाँ राम रहेंगे जहाँ लक्ष्मण रहेंगे मैं वहाँ ले जाऊँगा, सरयू के किनारे लेकर के तुमको रखूँगा। बोला अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, छोड़ दिया। जब तक एकदम चुपचाप शांत प्रशांत होकर के ब्रज में लेट करके ब्रज की धूलि अपने सर पर धारण कर ली और ब्रज के रजों से बस मिल गए, उसके अंदर समा गए, जिससे कोई अब नहीं देख सके, सर ऊंचा हुए ना तो दुनिया की नज़र पड़े हैं, बोलते हैं अति बड़ा हो ना झड़े भेंगे जावे और अति छोटे हो ना छागले मुड़े खावे हैं, इतना बड़ा मत बनो कि तुम्हारा खोपड़ी ही टूट जाए और इतने छोटे मत बनो कि बकरे भी चर जाए खा जाए हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा बनना भी बड़ा कठिन काम है हाँ, और ज़्यादा छोटे भी बन जाओगे ना तो कुचल डालेगा पीस डालेगा। तो गिरिराज जी ब्रज के रज में समा गया और ये पता नहीं कौन है, ये धूल मिट्टी में पड़े हैं हाँ। अब एक दिन दो दिन सत्य तेता गया, द्रापर आया, उस समय कृष्ण कहते हैं ये जो गिरिराज है, यदि किसी ने कभी गिरिराज जी के निकट नहीं पहुँचे तो नहीं समझ सकता। कहते हैं देखो कुसुम सरोवर से लेके राधा कुंड श्याम कुंड हैं, उससे चलो तो कुसुम सरोवर आएगा, नाम ही है कुसुम सरोवर, फूलों के बगीचे, कैसा फूल है, जो फूल कभी मुरझाते नहीं हैं, जो फूल गिरने के बाद में वो फूल अपने ऐसे बीज गिरता है तो पेड़ पौधा ही बनता है, हैं, वो बीज नष्ट नहीं होता। हाँ, कभी घास के बीज गिर गया पानी के अंदर में, पानी सूख गया, वहाँ हरे भरे घास सूख जाएंगे। तो ये फूल जल जगत के जड़ वस्तु नहीं है, चेतन वस्तु है। भगवान के सेवा के लिए हैं, और गिरिराज जी से उनका इतना प्रेम, गिरिराज जी को जानते सभी लोग मानते, सम्मान आदर करते, इसलिए गिरिराज जी के चारों तरफ इतने सुंदर सुंदर फूलों की बगीचे। किसी एक समय रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं मुक्ताचरित ग्रंथ, तो उन्होंने ध्यान करते करते देखा ये दीपावली जब आया ना, दीपावली के 8-10 दिन पहले से ही ब्रज में नियम है और सब देशों में भी नियम है, हैं, दीपावली के पहले सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रंग रोगन सफाई सुंदर साफ सुथरा करते हैं, नए नए वस्त्र लाते हैं और गायों को भी स्नान आदि करके सुंदर तिलक आदि मेहंदी आदि से रचते हैं और बड़े बड़ों की आदर सम्मान पूजा करते हैं और घर में हैं वो लोग इष्ट की अपने इष्ट इष्ट की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पुरोहित को गुरु को और सबको देते हैं और नया वस्त्र पहनते हैं। तो एक दिन देख रहे हैं दास गोस्वामी अपने समाधि में भजन में क्या देख रहे हैं, एक जगह है गोवर्धन के नज़दीक में कुसुम सरोवर के बाद, वो जगह का नाम श्यामतलाया और वहाँ पर रत्नवेदी रत्न सिंहासन है। वहाँ पर रत्नवेदी में श्रीमती राधारानी बैठी है और श्रीमती राधारानी सखियों के साथ में सुंदर सुंदर मुंगा मोती से कारुकार्य करके हीरा जहरत से सोना चांदी से इतना सुंदर सुंदर वस्त्र बना रहे हैं। कृष्ण ग्वाल पोखरा तक आए सब ग्वालाओं को लेके, सब सखाओं को लेके आ करके बोले भैया तुम यहाँ पानी वानी पियो, भोजन कर लो, मैं थोड़ा नेक नज़दीक हो आऊँ, ये बगीची है सामने, मैं थोड़ा देख के आऊँ, बड़े सुगंधी फलों की फूलों की गंध आ रहा है, यदि अच्छे फल हुए ना तो मैं लेके आऊँगा और तुम लोग खुश हो जाओगे, सब लोग जाने से ना विपद है क्योंकि मैं सुना है वहाँ पर कोई और दूतावास है, तो वहाँ सब लोग मत चलना, मैं अभी अकेला जाता हूँ और अभी आऊँगा, मधुमंगल में मैं चलूँ, बोले नहीं, सुबल में मैं चलूँ, नहीं मैं चलूँगा। तो चल दिए कृष्ण सबको समझा करके, बोले बेटे एक मैं खाते खाते जा रहा हूँ, अभी आया जाऊँगा, एक पकौड़ी खाते खाते तू भी खा ले जा। तो बड़े पकौड़ी और सभी लोग खा रहे हैं, अब आ करके बैठ गए कृष्ण, सब बैठ गए और मस्त हो गए। कृष्ण बोले मैं अभी आ रहा हूँ। कृष्ण प्रवेश करते करते इतना एकांतिक स्थान आज भी है, यदि कोई जाए तो भले ही वो समझे ना जाए तो कभी जन्म जन्मांतर में भी ना समझेंगे। तो वहाँ जा करके कृष्ण देखा, वाह, हीरा मोती और सुंदर सुंदर जहरतों से और धागा किसके हैं, सोने के और चांदी के हीरा जवाहरातों से वस्त्र बना रहे हैं, अलंकार बना रहे हैं, पिरो रहे हैं सुंदर सुंदर। तो कृष्ण बाबा पूछने लग गए, भाई तुम लोग क्या कर रहे हो इतने जंगलों में बैठ करके, इतने एकांत में, कोई बोले नहीं। बोले इससे बोलो तो एक बोलो तो 10 सुनाएगा, और बोलते चलो तो बोलना ही पड़ेगा, इनके साथ चुप नहीं रह सकते, ये तो बोलबाला है, किसी को शांति से जीने नहीं देता है ना रहने देता है, दिन भर गायों के बीच बीच चढ़ता रहता है और घूमता रहता है, हैं, और इसकी इससे कौन बात करे, और हमारा काम आकाश दीपावली है, तुरंत वस्त्र तैयार होना चाहिए। हाँ, तो बोले किसके लिए बना रहे हो, बोलो तो सही। कोई नहीं बोले और सब लोग बना रहे हैं और सुई धागा हैं और पिरो रहे हैं। तो बोले भाई एक बात बताओ, इतने सुंदर सुंदर मोती है कहाँ से तुम लोगों ने इकट्ठा की, तभी कोई बोले नहीं। बोला अच्छा ठीक है, मत बोलो, मुझे थोड़ा मूंगा मोती दे दोगे, कुछ बोले नहीं। बोले देखो, मांगने वाले को जो नहीं देता है ना, जो मांगने वाले को कुछ नहीं देता है तो मरा हुआ है, वो पहले ही मर गया, मांगने वाला तो है ही है मरा, जो मांगने वाले को नहीं देता वो पहले ही मर गया, तो इसलिए मांगने वाले को कोई वापिस नहीं करना चाहिए, जो मांगता है तो कुछ देना चाहिए। तो बोले तुम क्या करोगे, अब जवाब दिया, क्या करोगे, तो हमारे गायों को सजाएंगे सुंदर करके और सिंह में और झालर बना करके ऊपर देंगे, कितने सुंदर सुंदर हमारे गाय हैं, कालिंदी, गंगे, जमुने, पिसंगी, धवली, कितने सुंदर सुंदर गाय है, मैं दीपावली में उनको सजाऊंगा। बोले जैसे पशु के साथ रहसा है पशुपति, पशु का बुद्धि हो गया, बुद्धि भी पशुपति का बुद्धि पशु का ही हो गया। अरे ये मुंगामोती को पशु को पहनाया जाता है तो किसके लिए कर रहे हो, ये तो बोल नहीं रहे हो। बोले ये बोलने की नहीं है, करने की होती है, सब कुछ नहीं बोला जाता है। क्यों, ये लोग सब एकांत में किससे तैयारी कर रहे थे, काल दीपावली है तो दीपावली के दिन नंद भवन जाएंगे और कन्हैया को सजाएंगे, क्योंकि नटवर नंद किशोर कृष्ण है और उनको यदि उपहार नहीं दिया, सजाया नहीं दीपावली को, तो किस लिए दीपावली, क्या दीपावली है, हैं, उनको सजाएंगे, पहनाएंगे, आरती उतारेंगे और अच्छे अच्छे भोजन कराएंगे। इसे एकांत भाषा झगड़ा न झासा, एकांत में आकर के तैयारी कर रहे हैं। अब देखो पहुंच गया वहाँ, क्योंकि जो स्मरे वही भरे, जो याद करे उनके पास सब कुछ हो जाए, वो याद तो कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, वो वहाँ पहुँच गए। बोले दो, फिर क्या कि ये तो जाएगा नहीं, टूटे फूटे दो चार लेकर के बोल ले ये ले जाओ। तो अच्छा देख लो, याद रखो, एक दिन मुझे भी मांगने, मेरे पास भी मांगने आओगे ना, एक भी दाना कभी नहीं दूंगा, ध्यान रखना, याद रखना इन बातों को, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा, और हमसे मांगना मत कभी, और मांगने से दूंगा नहीं। सीधा वहाँ से सरपट झटपट भागे, कहाँ, नंदभवन चलाया। तो बोले लाला आज तू दुपरिया को आ गया, कहाँ गो, क्या हो गए थे तुझे, बोले मैया मैं मांगने आया कुछ, तो क्या, बोले मेरे को एक मोती की माला मिली थी ना, तो है तो दे दे, नहीं काल दीपावली काल पहनाऊंगा ना, आज दे दे, नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, नहीं देगी, वन में चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, देख ले मैं तेरा प्यारा नहीं हूँ, वो मोती की माला तेरा प्यारा है, रख ले तू, जा रहा हूँ मैं। मैं यहाँ भागी भागी गई, पकड़ के लाया, अच्छा बेटा देख काल पहन लियो, काल देख कितनी सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाएंगे, सजाएंगे और सुंदर त्यौहार है, काल काल अच्छे होंगे ना, काल पहनाऊंगा ना, आज क्या करेगा, और ना धो के अच्छे तरह से पूजा पाठ करके तभी तो पहनाऊंगा ना, नहीं नहीं मुझे अभी देना है। तो क्या करेगा, दे दो मुझे। मैं यहाँ तिजोरी खोला, खोल करके लाया, हाथ से देखाने लगे और खींच ली, तोड़ डाला, गिर गए मोती, मोती को सरप झटपट करके इकट्ठे करके बस भाग चले। जसोदा माँ बोली कैसे है, सचमुच में इतना नटखट है, इतना चंचल है, और बोल भी नहीं सकते कुछ, और भाग गया तो आया नहीं तो क्या करूं, और लेके चला गया। अब जाकर कहाँ गया पता है, थोड़ी दूर जाकर के गोवर्धन के तरटी में, जहाँ ये लोग माला पीरो हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र बना रहे हैं, थोड़ा दूरी पर सुंदर एक गड्ढा खोद दिली, गड्ढा खोद करके मोतियों को गाड़ दिया और वहाँ बैठ गए। सखाओं को बोले जाओ हमारे मैया से कहना जितना दूध है दे दे, और जितना दही है मक्खन है सब दे दे। बोले क्या करोगे, बोले मोती लगाए ना उसको सींचना है, ये पानी से सींचने से उगेगा नहीं, दूध सींचना पड़ेगा और मक्खन देना पड़ेगा और दही देना पड़ेगा तभी ये उगेगा। अब जाकर के सखा ने अपने घर में मांगा, बोले पागल के साथ और पागल हो गया है, एक तो पागल है और सबको पागल बना रखा है। मैया के पास गए, मैया तो कह नहीं सकती ना कुछ, अच्छा ले जा जितना दूध लेना है ले जा, और दूधों का ढेर ले आए, दही ले आए, कितना बड़ा गड्ढा, दूध और दही भर दिया, सींच दिया और मक्खन ऊपर से रख दिया, और वहाँ डेर तम्बू बांध ली, जाऊँगा नहीं, यहाँ ही रहूँगा क्योंकि मेरा मोती का बेल उगेगा, मोती होंगे और मैं गायों को सजाऊँगा। देखो क्या किया, एक हफ्ता बेरो नहीं जीत गया, सुंदर मोतिया बेलू गया। अब सखियों ने सुना, मंजरियों ने, ब्रजदेवियों ने बोला ये मूंगा मोती नहीं उगा है, ये बेल मोती का बेल नहीं है, ये हमारा सौत का बेल है, हैं ये हमारे झगड़ा बढ़ाने के लिए ये एक हमारे लिए सौत आ गई हैं। अब क्या हुआ, कुछ दिनों बेल बढ़ता गया और पूरा मचान बना दी और सुंदर फूल खिले, गंध से पूरा ब्रज भर गया इतना सुगंध। और कुछ दिनों बाद वो मोती के सिप जैसे दो तरफ दो निकल आया, पूरा झाड़ी लग गई। फिर कृष्ण ने मोतियों को निकाला और मोती पिरोया, गायों के पीठ पर झालर चढ़ाया, सिंह को सजाया, पैर में उनका पैजेब बनाया, पूरा शरीर सजा करके अब झुंडक झुंडक गायों को लेकर के अब ब्रज में जा रहा है। जोई देखे सोई कहे, भाई धन्य है हैं तेरा लाला, देख अनहोनी को होनी कर दी हैं, ये मोती अब कितने ब्रज में मोती है, मूंगा है बता, एक माला तू लेकर तिजोरी में रख दी, वो भी वृषभानु महाराज ने दिया था सगाई में, कृष्ण का सगाई हो गया था राधा रानी के साथ, लाडली के साथ, वृषभानु महाराज पहाड़ी के ऊपर से देख रहे हैं कृष्ण के गायों के झुंडों को लेकर के आ रहे हैं। बोले भैया इनके घर में कैसे रिश्ता करेंगे, अपने बराबरी से तो रिश्ता की जाती है, हमने एक मोती की माला दिया सगाई में, इसने तो भाई गायों को, बछड़ों को, बिजारों को, सांडों को, सबको मोती के माला से सजा दिया और झालर से, कितनी धनी मानी है दौलतराम, इससे क्या रिश्ता करेंगे, हम नहीं कर सकते, आज हम रिश्ता तोड़ते हैं, रिश्ता तोड़ दिया। अब तो बात सुनकर के कन्हैया कितना दुखी हो गए, हाय हाय हमारा रिश्ता हुए और रिश्ता भी टूट गया, अब क्या होगा हैं, देखो मोती के माला तो मोती तो उगाया, तो ये गिरिराज गोवर्धन जो जो कुछ मांगे, बिना मांगे मोती मिले, कहते हैं ना बिना मांगे मोती मिले हैं? देखो कृष्ण कहते हैं ये ब्रज में गिरिराज जी हैं, उनके पास जाओ तो क्या कमी है, क्या मोती होती है ऐसा ही, इतनी सुंदर फूल है, इतना सुंदर फल है, इतना कंदमूल है, इतना जल है, इतना सुंदर सुंदर हैं भगवान के गुफाएं हैं, हैं कुंज कुटीर हैं जो कि अन्यत्र कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। अब सब लोग चलो हम दीपदान करेंगे हैं गिरिराज जी के लिए, और दीपदान करके फिर हम काल गिरिराज जी की पूजन करेंगे और उनको अन्नकूट अर्थात भगवत प्रसाद सबसे उत्तम उत्तम वस्तु समर्पण करेंगे, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं है, हैं इसके लिए सब लोग चलो। तो सब लोग कृष्ण के बात में तो राजी हो गया, क्योंकि आंखों से देखा हैं क्या करते हैं, और जबकि गोवर्धन में कोई भी उनके बालक आते हैं कृष्ण के साथ और दो दिन में सुष्ट पुष्ट एकदम सुंदर हो जाता है, माँ बाप को सम्मान करता है, गायें दूध देती है बहुत सारा, गाय हृष्ट पुष्ट हो जाती है, निरोग हो जाते हैं। और क्या देखा इन लोगों ने, बड़ी बूढ़ी बड़े बूढ़े ये लोग हैं घर घर से बाहर नहीं निकलने वाले, एक बार इन लोगों ने कैसे गिरिराज जी पहुँच गए, मानसिक में नहा लिया हैं और गोवर्धन के तरटी में आई गए, और वो लोग जवानों से और भी अधिक ताकतवर हो जाते, पहलवान हो जाते हैं, सब देख देख करके गिरिराज जी की महिमा हैं सब लोग बड़े आकर्षित हो गए। अब कृष्ण ने कहा कि उसके पहले हैं हमारे कृष्ण के बाबा नंद बाबा के पिताजी पर्जन्य ऋषि ने, उन्होंने कहा बेटा एक बार सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार सब तीर्थ बार बार जाओ कोई बात नहीं, गंगा सागर जीवन में एक बार जाना चाहिए, नहीं तो मिट्टी पलित हो जाएगा, ये मिट्टी कोई काम का नहीं है, जब तक शरीर में मिट्टी है तब तक गंगा सागर नहीं नहाए ये पवित्र नहीं होगा, जन्म कितने जन्म कर्म से तो ये मिली है मिट्टी, अब ये मिट्टी यदि गंगा सागर नहीं नहाया तो मिट्टी कभी शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये मिट्टी दुखदायी है, गंगा सागर नहाया कि नहीं ये मिट्टी शुद्ध हो जाता है। तो मुझे एक बार स्नान करा के ला, नंद बाबा को बोला। नंद बाबा बोले अब कितने दिन रह गए, बोले एक दिन रह गया। तो कैसे जाओगे, 2 महीना पैदल चल चल करके जा सकते हैं और उससे भी अधिक लगे, अब आप कहने से कैसे करें। बोले तेरे लाला को कह दे, वो ले जाएंगे। एक इसके अंदर में भगवान विष्णु नारायण राम गुरुर सब समय हुए हैं, वो चाहे तो हमें अभी ले चले। तो कन्हैया को बुलाया बाबा ने, लाला सुन रे तेरे बाबा क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ले चलो कहाँ, गंगा सागर। तो गंगा सागर कैसे जाएंगे गंगा सागर, बोले तू जानता है तेरे पास, तू जिसको बुलाएगा वही आ जाएगा, अभी यदि बुलाएगा नारायण को नारायण आ जाता है, विष्णु को बोले विष्णु आ जाए, गोलूर को बोले गोलूर आ जाए, सब हम बैठ जाएंगे गोलूर के पीठ पर और चलेंगे, कितनी देर लगेगा। बोला अच्छी अच्छी बात है। बाबा को बोला चलो ऐसे नहीं जाया जाता, तीर्थ में जाने के लिए कुछ हैं व्यवस्था करनी होती है। तो क्या, बोले गए तीर्थ में स्नान करने, गाय भैंस की तरह बंदर भालुओं की तरह डुबकी लगा चलाया, ऐसा नहीं। पहले उनकी मान सम्मान होती है, पूजा पाठ होता है, भोग राग होता है, आरती और सब कुछ करना पड़ता है, तब तो उनके कृपा मिलते हैं, नहीं तो क्या करेंगे। जब पता है अभी देखा राधा कुंड, वो चल गया कूद गया हैं बंदर भालुओं की तरह और गोता लगा के उठे आए, न पूजा न पाठ न सम्मान न आदर, ऐसे गंगा नहाएंगे हैं, गंगा जी को एक प्रणाम भी नहीं करेंगे। तो ये भैंस की तरह केवल नहाने से चलता है। तो कृष्ण की बात सुनकर के चक रह गए। अच्छा तो क्या करना है, बोले दिया बत्ती नहीं, सुंदर सुंदर भोगरा लाओ, सजाओ, सब तैयारी करो, छकड़ों में भरो, गाड़ी में भर लो और भर करके चलो। तो कहाँ, चलो गिरिराज जी के पास और वही हमें ले जाएंगे गंगा सागर में। बोले अच्छी बात है, तेरा गिरिराज जी बड़े दयालु हैं। बोले क्यों नहीं हैं, चलो। तो उनको लेकर के सबको लेकर शाम को आ गया, दिया बत्ती जोड़ा और गिरिराज जी बोले हम गंगा जी नहा के आपके भोगों को लगाएंगे, पहले गंगा जी की पूजन करेंगे हैं, फिर आपका पूजन करेंगे, भोगरा लगाएंगे, आप हमें गंगा सागर ले चलो। तो उनके तोत्री बोली और ब्रजवासी सब बोले, हमारे सबकी इच्छा गंगा सागर नहाने की। अब भगवान क्या बोले, ठीक है आप सो जाओ, कुछ खा पी करके सो जाओ, तड़के हम लोग गिरिराज जी हमें ले जाएंगे। बस सो गए, इतने में कृष्ण आधी रात को उठकर चिल्लाने लग गए, अरे गंगा सागर आ गए, गंगा जी आ गए आ गए, उठो 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 उठो, क्या दिख रहे हैं, बड़े स्रोत आ रहे हैं बड़े तेजी से और सुंदर निर्मल जल, घंटा घड़ियाल बज रहा है और सब लोग शंख बजा रहे हैं, भगीरथ आ गया, कपिल मुनि आ गए और गंगा जी आ रहे हैं, सब लोग नगाड़ा बजा रहे हैं, हैं कितने झांझ करताल जितने झंप बज रहा है, सब ढाकढोल पीट रहे हैं। बस सारे भजबासी उठ गए, बाबा उठ गए, नंद बाबा सब उठकर बोले लो अब नहा लो, सब लोग स्नान कर रहे हैं। ओ गिरिराज जी कैसे हैं, कितने ऊंचे हैं, गिरिराज जी आहो भाग्य हमारा, अब मैं भी नहा लूँ, गिरिराज जी भी उतर गए एकदम हैं नीचे उतर करके, वो भी नहाने लग गए, सब ने नहाया धोया, बड़े खुश, आरती उतारे, मनोती मांगे, हमें लाला की हैं लंबी उम्र मिले और हम लोगों की कामनाएं पूरा करो, सब लोग स्नान ग्रहण कर खुश हुए। सका लोग आए आकर बोले रात भर तूने सारे नालियों को बांध बांध कर रख दिया और सुबह खोल दिया पानी हैं, और तू बोलता है कि ये गंगा का पानी है हैं, अरे गंगा तो भगवान के चरणों से निकलता है, तू हमें बहका रहा है, हम ग्वारिया है, तू भी हमें पागल बना रहा है हैं, बड़े बूढ़ों को तो पागल बना दिया, हमें भी पागल बना रहा है। तो कृष्ण कहते हैं तो क्या चाहिए, बोले भगवान के चरणों के धवन है गंगा, यहाँ भगवान कहाँ है, बोले चल मेरे साथ चल। सबको लेके चले, वो ऊंचे टुंगी में भगवान हरिदेव विराजमान है और उनके चरणों से झरझर झरझर गंगा निकल रहे हैं, वो देखा नीचे ब्रह्मकुंड है, इसके बाद मानसी गंगा है, देखा ब्रह्म के भगवान के चरण धूलि चरण रज चरणामृत, खुश हो गए। अब तो सखियों ने पूछा भाई इस गंगा का क्या नाम है, बोले इस गंगा का नाम मानसी गंगा। बोले लो अब तो नाराज हो गई एकदम, सब लोग पीठ दिखा दिया, अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम ऐसे हो ठगने वाले, सारा जीवन बोले कि तुम्हारे हमारे मन में तुम लोगों की जगह है, और तुमने गंगा जी को और बैठा लिया कहाँ से ला करके, और उनसे निकाल करके बोल रहे ये गंगा है, तो तुम्हारा कपटता कितना है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। बोला अच्छा तुम लोगों का दुख हो रहा है, मेरे हृदय में गंगा जी है, मैं मन से निकाल दिया, हमारे मन में तुम्हारा जगह नहीं है। देखो ये गंगा का नाम मानसी गंगा क्यों दिया बताऊं, ये गंगा कैसे हैं, दूसरे गंगा शरीर को पवित्र कर सकता है, तन को, मन को नहीं। यहाँ नहाओगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। इससे मैंने बोला मैं मन से गंगा को प्रकट किया बुलाया, और गंगा में नहाओगे ना भले ही तन पवित्र हो जाए, शरीर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, मन पवित्र नहीं होगा, आत्मा पवित्र नहीं होगा। वो भी बहुत दिन लगेगा, जब उपासना करेंगे तब भले ही हो जाए। अरे गंगा जी में नहाने से तन मन आत्मा पवित्र हो जाएगा। अब खुश हो गए सब लोग, सब ने पूजा पाठ की। बोले लाला तेरे अंदर में इतना ज्ञान किसने भरी, कहाँ से लाया तूने इतना ज्ञान, हैं अब तेरे पास जो मांगते हैं सो दे देता है और समझा और देता है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे गिरिराज जी को छोड़ करके कहाँ जाओगे, जो मांगो सब कुछ तो आपके मनोरथ पूरा करे हैं। अब गिरिराज जी के पूजन करो, सब भोगरा का लगाओ। तो अभी नए नए बाजरा निकला, बाजरा के बाजरा रांध लिया और कड़ी बनाए हैं, और सुंदर सुंदर पूड़ी पकवान सेके, और ब्रज में नियम है बाटी और चूरमा हैं, और सुंदर सुंदर घेवर फेनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सब भोगरा का लगाया, और गिरिराज जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के क्या बोल रहे हैं, आनो रे और ले आओ और ले आओ और ले आओ हैं, बस जितना ला रहे हैं, चार हाथ है दो हाथ नहीं हैं, दो हाथ से खा रहे हैं और दो हाथ से ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं। कृष्ण हंस रहे मुस्कुरा, देखो देखो तुम्हारे इंद्र कभी आया, कभी भूख आरोगा, देखो हमारे गिरिराज कैसे हैं गोवर्धन, जितना दे रहे हैं सब खाए जा रहे हैं। और बोलते हैं कृष्ण हे गिरिराज हे गोवर्धन, ब्रजवासी ब्रज के सब गरीब इनके पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ था सब दे दिया, अब संतुष्ट हो जाओ। डकार ले ली भाई होगा होगा ना, और दो बोल पानी पी लो, मानसी गंगा पानी घड़ा भर भर कर लाया, खूब पी लिया, गंगा का पानी कम को भी होगा वो तो कम होने नहीं, पी लिया। इसके बाद क्या हुआ, बोले अब तो संतुष्ट हो जाओ। तो भगवान ने तुलसी दल दे दी, तुलसी मंजरी दे दी, खुश हो गया, वाह तृप्तोस्मि, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ। अब क्या कहा, ये ब्रजवासी जन आपके पास आए, आपके दर्शन किए, आपने सारा प्रसाद पा लिया, अब इनके लिए क्या होगा, इनको कुछ झूठन तो दे दो, उच्छिष्ट तो दे दो। एकदम डकार ली, जैसे कभी जाएंगे ना पानी सिंह मलयाचल मलयाचल में साउथ में, तो नृसिंहदेव को रोज हैं 50 लीटर 100 लीटर 1000 लीटर हैं शिकंजी शरबत पिलाते हैं। वो शरबत भी कैसे होगा, गुड़ सौंफ और काली मिर्ची और कुछ नहीं, ऐसे बड़े बड़े भगुना पतलिया भर भर के पिलाएंगे, और पिलाएंगे ना आधा पी लेंगे, कहाँ जाता है आज तो किसी को पता नहीं, आधा पी लेंगे फिर थोड़ी देर में डकार लेंगे, तो थोड़ा सा आएगा वापिस, तो उसको मिला लेंगे और सबको प्रसाद बांटेंगे। ऐसे गिरिराज जी ने आज डकार ले ली, और ये सारे बर्तन भर गए, जितने बर्तन खाली हुए सबरे भर गए। कृष्ण बोले लो ये लो प्रसाद, और क्या देख रहे हैं, क्या सुगंधी, क्या सुंदर, क्या स्वादिष्ट हैं वो प्रसाद। और प्रसाद देख करके कृष्ण बोले पहले हैं बड़े बूढ़ों को प्रसाद दो, ब्राह्मण देवताओं को, इसके बाद ग्वाल बालों को हैं, और सब लोग खाने के बाद अब हम लोग बाद में प्रसाद पाएंगे। सबको खिलाया, कृष्ण ने सखाओं के साथ बैठ करके प्रसाद पाया और बोले चलो अब परिक्रमा देंगे। और पैदल की जरूरत नहीं, जिसके पैदल चले चलो गाड़ियों में छकड़ों में बैठ जाओ और नाचते गाते हुए परिक्रमा करेंगे। तो बोले क्यों भाई परिक्रमा क्यों करेगा? बोले दुनिया की परिक्रमा करके तो दुनिया के साथ बंध गए, गिरिराज जी परिक्रमा करेंगे के साथ गिरिराज के साथ गठबंधन हो जाएगा, चिरकाल उनका ही बने रहेंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम उनका छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक बार वो परिक्रमा करके माला पहना देते हैं, चिरकाल उनका बन जाता है, मरे भी नहीं छोड़ते, जीते जी तो छोड़ रहे नहीं हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे और करके उनके साथ चिरकाल हम उनके आश्रय में लेंगे। अब परिक्रमा चलने लगा, सका लोग बोले लाला भैया देख इतने स्वादिष्ट प्रसाद छोकड़ों में तूने भर ली, खाने को नहीं देगा? बोले क्यों नहीं, मालपुआ खा, राबड़ी खा लो और परिक्रमा करो हैं। अच्छा अच्छा गिरिराज जी के तरटी में कितने कुंड है पता है? हजारों कुंड हैं, सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है, पानी पियो, नहा लो, परिक्रमा करेंगे। जगह जगह पर जाकर के ना इतना कीर्तन नित्य होता है और करके परिक्रमा पूरा किया। बस करके अभी गए कि नहीं ब्रज में, इंद्र का कोप देखो, गाली गलौज तो करे ही करे और देवताओं को सबको भिड़ा दिया, ध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। ग्वालों की बात सुन करके ग्वालों ने मूर्ख हाँ इनके बात सुनकर हमारा सब बर्बाद कर दिया। कृष्ण कहता अच्छा अब सब भगवान आए कृष्ण के पास, कृष्ण बोले चलो गिरिराज के पास, गिरिराज भाई आए तो गिरिराज क्या किया, उठकर खड़े हो गए, बस सबरे गिरिराज के अंदर समा गए। अब क्या 7 दिन 7 रात हैं, भोजन पानी रसोई खाट पलंग कपड़े लत्ते गायों के लिए बुक घास कौन सी कमी है, सब गिरिराज जी पूरा कर दिया। इससे कृष्ण कहते अपनी पूजा नहीं कराया, गिरिराज जी की पूजा कराया। और कहते हैं गिरिराज जी को इतना सा कोई दान देगा, गिरिराज जी ग्रहण करके उसको अपने सब कुछ नौछार करने वाले, नाम है दान घाटी है, वहाँ भगवान स्वयं खड़े हैं, दे दो कुछ गिरिराज जी को दे दो है, तो एक फल फूल भी दे देंगे, वो आपको सब कुछ पूरा करने वाले हैं, आत्मा को संतुष्ट करने वाले। तो ऐसे आज गिरिराज जी के अन्नकूट महोत्सव है, चिरकाल चले आ रहे हैं। हमारे महाराज जी गुरुजी महाराज कहते थे देखो हम ब्रज में कैसे न कैसे आप कोई पहुंच गए, तो क्यों नहीं हम गिरिराज जी के पास जाए अन्नकूट महोत्सव करें, क्यों नहीं मानसी गंगा में दीपदान करें। तो उस समय हम लोग का आश्रम नहीं था कोई, तो हम लोग कभी मोदी भवन में, कभी कोई धर्मशाला मैना धर्मशाला, कितने कितने हुआ है लक्ष्मीनाथ धर्मशाला, कोई ना कोई ठहर जाते और जाके गिरिराज जी में हैं 3 रात्रि वास करते और वहाँ अन्नकूट महोत्सव करते। सारे ब्रज पूरा भारतवर्ष के संत लोग आते, फिर गुरु जी जब विदेश जाने लग गए सबको बुला लिया आओ गोवर्धन में हैं। किस एक समय जब साईं महाराज अप्रकट हो गए तो वो बोलते थे अप्रकट के पहले भी मुझे गोवर्धन ले चलो, छकड़े में ले चलो, तो फिर तो अप्रकट हो गए। ठीक अन्नकूट आज है, 2 दिन बाद उनका प्रकट लीला है हाँ। तो हम गोवर्धन में बड़े उत्सव करते हैं और उनका तिरुवाप तिथि भी वर्षा में मनाते हैं। तो इस बार क्या हुआ, मैंने बोला देखो भाई गोवर्धन में गिरिराज जी के अन्नकूट करके बरसाना जाना होता है, तो रात को सोया तो कहता है सपने में देखा स्वामी जी आ गए, एक लाठिया पकड़ के चलते पूरा कोट आ गए, आके क्या बोलते हैं इतना उत्सव करता है और मेरे को थोड़ा भोग देता नहीं है, तो मैं आप तो है नहीं आप तो चले गए। बोला अच्छा मूर्ख मैं चला गया, मैं एक शरीर छोड़ दिया लाखों शरीर में रहा है, इस समय एक मूर्ति छोड़ दी लाखों मूर्ति में मैं विराजमान हूँ और तू बोले चला गया, तो कहाँ रहते दिखाओ, और मेरा हाथ पकड़ करके ले चले। चलते 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 दानघाटी पार किया, थोड़ी दूर में जाकर के गिरे देखे चट्टान को उन्होंने लाठिया से ऐसे उठा दी। मैंने भैया कितना ताकत है आप में, इतने बड़े चट्टान को उठा दिया। बोले चल अंदर गया, कितने दूर तक, क्या देखा, एक गुफा अंदर में राधा कृष्ण की मूर्ति है। बोले आप यहाँ रहते हैं? बोले हैं। अकेला? बोले अकेला हूँ, कोई नहीं है। तो बोले देख, मैं देख बरसात का पानी झड़ रहा है। मैं बोला आपका पानी भी झड़ रहा है, इसमें गीले में कैसे रहते हैं? बोले नहीं, थोड़ा अच्छे जगह भी है। इतने क्या देख रहा हूँ, देखो महाराज जी हजारों लोगों को लेकर कीर्तन के साथ आ गए। बोले देख तेरे महाराज आ गए। और कुछ बना? मैं क्या बनाऊँ? बोले खिचड़ी बना। बोले लकड़ी कहाँ है? बोले देखो टाँड में रख दिया। बर्तन कहाँ है? बोले देख सब है, बनाओ जल्दी बनाओ। बना दिया, महाराज जी भोग लगाओ, खिलाओ, खिला दिया, चले गए। मैं सुबह उठ करके अनाउंस कर दिया 3 बजे कि ये स्वामी जी का आदेश है, गोवर्धन में उनके तिरुभाव तिथि होगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत नहीं कर सकता। उनके शिष्य जितने थे महाराज के साथ सब बिगड़ गए। हाँ बरसाने में करते राधा रानी के धाम में नहीं करने दूंगा यहाँ, मैं आप कुछ नहीं कर सकते, हमें आदेश दे दिया और हमें दिखा दिया कहाँ रहते हैं और मैं जानता हूँ। अब मैं उनके बड़े बड़े समोसा, हाँ उनको बहुत प्रिय था समोसा और कचौड़ी और पूड़ी, वो भी देसी घी के पत्ता पत्ता बड़ा बड़ा पूड़ी, हाँ तो मैं यहीं करूँगा, ये बिगड़ गए। इतने में क्या हुआ, एक दूसरे दिन ही महाराज जी दिल्ली जाना पड़ा किसी कारण से, विशेष जरूरी पड़ गया। महाराज वहाँ जाकर बोले अब हम लोग प्रभुपाद जी की तिथि करके ही हम बरसाना जाएंगे। बस उस बार शुरू हो गया और विशाल उत्सव है। तो गिरिराज जी में अब मेरे गुरु महाराज ठीक उसी के पास में उनका भजन कुटी, अब तो अच्छा मंदिर भी बन गया आजकल। उसके वहाँ ही हम लोग मोदी भवन में रहते थे और वहाँ ही हम लोग अन्नकूट करते थे। वहाँ ही चंदन शिला है, वहाँ ही 8 सखियों का स्थान है जहाँ पर लोग बैठते थे। दान घाटी में कृष्ण ने दान ले ली, सब लोग दुखी हो गए, हमारा यज्ञ के लिए जाएंगे गोविंद कुंड में और कृष्ण ने छीन ली, दुखी कर बैठ गए। कृष्ण बोले तुम लोग बरसाना से गांव-गांव से आए थक गए ना, इससे मैंने ले लिया, मैं सखाओं को देके गोविंद कुंड पहुँचा दूंगा, तुम नाराज मत हो। कृष्ण स्वयं उन लोगों को पाद सम्मान करने लग गए, आरती उतारने लग गए और उनकी सेवा में लग गए, स्वस्थ करके फिर गोविंद कुंड में खुद पहुँचाया। तो ऐसे जो दान घाटी है, हैं ये सब लीलाओं का कितने अनंत लीलाएं। अब आज तो टाइम बहुत हो गया, अब गोवर्धन के लिए चलना है, हैं भक्त लोग चलेंगे, उनका उपहार जितना जो कुछ है सब कुछ लेके अभिषेक करेंगे और वहाँ पर भोगराग करके प्रसाद पाएंगे। और कुछ भक्तों की इच्छा है बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, तो वहाँ से वो लोग जाएंगे। और जो लोग वृंदावन परिक्रमा करते हैं रोज दिन, वो लोग तो यहाँ रहेंगे क्योंकि यहाँ भी अन्नकूट होगा और भक्त लोग आएंगे, यहाँ भी उत्सव होना है, सब लोग जाने से मैं अकेला हो जाता हूँ, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अब की बार, पिछली बार भी सब भक्त गए, तो अब की बार हम लोग अगला अन्नकूट करेंगे 20 तारीख को, 20 नवम्बर को, उस समय सभी लोग जाएंगे हैं। किंतु आज जो दूर से आए हुए हैं वो लोग जाए, और अभी सब तैयार है, सब कुछ लेके गिरिराज जाकर अभिषेक करके, और वहाँ हमारे मदन प्रभु भी जाएंगे, रसिक प्रभु जाएंगे और कुछ भक्त लोग जाएंगे। आप लोग जाओ अभिषेक करके, आरती आरती करके, और गिरिराज जी से ये मनती मांगो कि सदा निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम।